आपको याद है पिछले बार हमने प्रेरितों का 20 अध्याय को हमने समाप्त किया था, और 20 अध्याय बिल्कुल एक अलग अध्याय है। हमने इस बात को देखा था प्रेरितों काम की पुस्तक जो है वो वास्तविक से पवित्र आत्मा के कार्य की पुस्तक है, जो पवित्र आत्मा ने अपने प्रेरितों के द्वारा किए। पिछली बार मैंने उसको समझाया था, क्योंकि प्रेरित जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था। पौलुस एक प्रेरित था, पौलुस प्रभु यीशु मसीह के समय में उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद उसको दर्शन दिया और कई बार उसे दर्शन दिए, बातचीत करी, इसलिए वो पौलुस एक विशेष रूप से उसको प्रेरिताई का मिला। पत्रस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा और पौलुस के द्वारा, पौलुस के साथ अन्य लोगों के साथ जो कार्य किया गया कलीसिया की स्थापना का, वो सब इसमें वर्णन है। सो एक समय था प्रभु यीशु मसीह के कार्य का वर्णन है सुसमाचार में, अब पवित्र आत्मा के कार्य का वर्णन है प्रेरितों में, और तब प्रेरितों काम की पुस्तक हम देख रहे हैं। तो हमने देखा था कि हम देख रहे हैं कि तीन मिशनरी यात्रा पौलुस ने की। पहली मिशनरी यात्रा में उसने किस प्रकार से जगह जगह पर सुसमाचार प्रचार करते हुए कलीसिया की स्थापना की। फिलिपी की कलीसिया की स्थापना हुई, फिलिपी कलीसिया, थिस्सलुनी कलीसिया, कुरिन्थी की कलीसिया, इन कलीसियाओं की स्थापना हुई। अब ये तीसरी मिशनरी यात्रा में अब समय आ रहा है कि पौलुस के हृदय में इच्छा है कि वो वापस जाए, अपने यरूशलेम वापस जाए। लेकिन उससे पहले 20वें अध्याय में उसने प्राचीनों को बुलाया है। तीन शब्द आया वहां पर, प्राचीन शब्द आया है, अध्यक्ष शब्द आया है, और प्राचीन के साथ अध्यक्ष के साथ साथ चरवाहा शब्द आया। तीन शब्द 20वें अध्याय में उत्पत्ति से है। प्राचीन वो है जिनको कलीसिया में सेवा दी जाती है, सेवा जो एल्डर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्डर्स, और अध्यक्ष भी एल्डर्स है लेकिन वो उमरदार है, जैसे पौलुस उमरदार था, सीनियर जो है। यद्यपि आज दूसरी रीति से दूसरे कलीसियाओं में कई अलग अलग तरह से बिशप भी बुलाता है, लेकिन वो सब एक ही हैं, और परमेश्वर ने सबको एक जिम्मेदारी दी है। और ये जरूर है जो अध्यक्ष हैं वो सीनियर होने के नाते उनके अंदर में कई सारे और एल्डर्स रहते हैं, लेकिन धर्म सेवक अलग हैं जिनको डीकन बोलते हैं। डीकन और एल्डर्स में फर्क है, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डीकन अलग है, एल्डर्स अलग है। डीकन्स का मुख्य काम है कलीसिया की व्यावहारिक कार्यों के सेवा में सहयोग करना, प्रैक्टिकल कार्य में मदद करना। एल्डर्स का काम मुख्य रीति से वचन की सेवा करना है, शिक्षा देना है कलीसिया को, आत्मिक रीति से आत्मिक ज्ञान में विश्वासियों को शिक्षा में बढ़ाना है, ये उनका मुख्य काम है। गुण और दोनों के लगभग समान है, लगभग समान है, जो उसको अलग हम देखते हैं। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो उसको बुला करके वो शिक्षा दे रहा है, उसको मालूम है कि मेरा समय पूरा हो रहा है, अब उसको बता रहा है कि किस रीति से उनको सेवा करनी है। तो 20वां अध्याय मुख्य रीति से पौलुस अपने जीवन के साक्षी के द्वारा कि देखो मैंने इस प्रकार से एक एल्डर के रूप में सेवा करी है, तुमको भी इस प्रकार से सेवा करनी है, तुमको भी ऐसी सेवा करनी है। अपने जीवन के उदाहरण के साथ वो उनको दे रहा है कि तुमको किस प्रकार से कलीसिया की देखभाल करनी है, विश्वासी को संभालना है, कैसे उनके साथ आगे उनको आगे बढ़ाना है, ये करता है। लेकिन जब आगे चलते हैं तो फिर हम उसके बाद 21वें अध्याय में आते हैं, लेकिन 20 अध्याय के 36 पद में अब क्या हो रहा है कि अपॉलुस वहां से आगे बढ़ रहा है, और पौलुस अब प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करके लोगों को प्रभु के हाथों में देता है। 36 पद में, 20 के 36 पद में लिखा है, ये कहकर उसने घुटने टेके और सबके साथ प्रार्थना की। घुटने टेके और सबके साथ प्रार्थना की, पौलुस को बार बार हम घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी हम घुटने टेक कर प्रार्थना करने देखते हैं, समझ रहे हैं। सो घुटने टेक कर प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। आजकल हमारे घुटने कमजोर हो रहे हैं, घर में भी हम लोग घुटने पे बहुत कम प्रार्थना करते हैं, लेकिन अच्छे हैं वो परिवार लोग जो घुटने में बैठ करके या नीचे बैठ करके घुटने पे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम बदलता जा रहा है। हम कई सारी चीजें वेस्टर्न से बहुत ले लेते हैं, वेस्टर्न से बहुत सारी चीजें लेते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें जो शिष्य प्रथा, शिष्य प्रथा का यही तरीका था, शिष्य प्रथा गुरु के सामने शिष्य लोग नीचे बैठते थे, ये और ये भारत की प्रथा थी, एशियन प्रथा थी, बाइबल एशियन कल्चर में लिखी गई है, उसको समझना है। और इसलिए बहुत सारी चीज है जो वेस्टर्न में, पाश्चात्य देश में और यहाँ पर मिलता नहीं है, और हमें समझना है इस बात को। सो यहाँ पर हम देखते हैं, अब प्रार्थना करके वो आगे बढ़ता है, आशीष देता है, परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है और आगे निकल जाता है 21वें अध्याय में। 21, अब देखिए जो हेडिंग है वह है यरूशलेम की यात्रा। लेकिन अगर हम देखें तो सचमुच में इस पूरे 21 अध्याय को हम अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जीना, पौलुस किस रीति से परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड है, उसमें वो जीना चाहता है, किस रीति से वो सेवा करना चाहता है, ये है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बढ़ते हुए कुछ बातों को हम सोचना चाहेंगे, कुछ प्रश्न है जिन पर विचार करना चाहेंगे। और इन प्रश्नों को सोचते हुए हम आज के 46 अध्याय में नहीं जाएंगे, केवल 17 अध्याय में हम तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमें टेबल में भाग लेना है। पहली बात, हमें कलीसिया में एक दूसरे विश्वासी भाई बहनों के साथ कैसे संबंध बनाना, ये देखना है, ये सोचना है। हमारा संबंध विश्वासी कलीसिया में विश्वासी परिवार साथ कैसा संबंध होना है, क्या हम आइसोलेटेड तो नहीं है, अलग तो नहीं है। हाँ, संडे को चले गए, चर्च मिल लिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन बाकी हफ्ते में क्या है, क्या किसी दूसरे विश्वास साथ हमारा संपर्क है, किसी के हालचाल पूछते हैं, किसी के साथ प्रार्थना करते हैं, किसी लिए कुछ और करते हैं। हाँ, सेवा का उनकी जिम्मेदारी वो करेंगे, लेकिन हम जो सह विश्वासी हैं, हम किस प्रकार से एक दूसरे साथ एक दूसरे के बारे में सोचते विचारते प्रार्थना करते हैं, बहुत जरूरी है विश्वास। दूसरा प्रश्न, हमें अपने जीवन के लक्ष्य और योजनाओं को कैसे निरीक्षण करना है, जो हमारे जीवन, हमने अगर अपने जीवन के लक्ष्य बना रहे, क्या लक्ष्य बनाए हमने, अपने जीवन के क्या गोल बनाए, आत्मिक गोल, ठीक है, हमने प्रभु को पा लिया, अब मेरे जीवन का गोल क्या है, अब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। पौलुस के जीवन का गोल था, बहुत सारी बातें हैं जो उसके गोल में बार बार कहता है, मैं अपने लक्ष्य की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। वो लक्ष्य निशाना कह रहा हूं, जीना मसीह, मरना लाभ, मसीह को प्राप्त करो, केवल मसीह के लिए, जो उसका एक जीवन का लक्ष्य था। मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, एक विश्वासी होना थे, किस प्रकार से हम उस लक्ष्य को अपने जीवन परख रहे, ठीक है। काम हमें करना है, व्यवसाय में करना है, नौकरी में करनी है, बच्चों को परवरिश में करनी है, ये सारी चीज जरूरी, परिवार में वो सारी परमेश्वर वचन सिखाता है उसको करना, और भी गंभीरदार। लेकिन अगर हमारा गोल मसीह है, हमारा लक्ष्य मसीह है, तो हमारे जितनी भी चीजें जुड़ी हुई, चाहे हमारा व्यवसाय है, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन है, चाहे हमारा पारिवारिक जीवन है, वो उसी के इर्द गिर्द रहेगा, उसी के इर्द गिर्द रहेगा, हमारा ध्यान पूरी से मसीह रहेगा। हम अपने जीवन में अपने बच्चों की परवरिश इसी तरह से करेंगे, हम उनका मार्गदर्शन उसी तरह से करेंगे, ये हमारे जीवन होना है। तीसरी बात, जीवन की कठिन परिस्थिति में और समस्याओं में हम कैसे खड़े होते हैं। समस्याएं, परीक्षाएं, कठिन परिस्थितियां हैं, बीमारियां हैं, विरोध हैं, ऐसे में हम कैसे खड़े होते हैं, उस समय हमारा विश्वास की स्थिति क्या है। अभी इन दिनों में जैसे 6-7 महीने में कोरोना 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 इतना हल्ला मचा था, ठीक है, बहुत सारे लोग बीमार भी हुए, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो जिनके साथ हम सेवा करते रहे या जुड़े हुए हैं। अभी पिछले दिनों में हमारे जो AFI है, उनके जो जनरल सेक्रेटरी, पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित हो गया, और भाई उसकी वाइफ जो है पंजाबी परिवार से प्रभु में आई है, अभी पिछले हफ्ते हॉस्पिटल से निकली है, लेकिन भाई अभी तक हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए, भाई विजेश नाम है उनका। तो है बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जिनको का सामना करना पड़ा है, पर प्रभु ने संभाला। तो लेकिन ये किस सारे जीवन पर, इन सारी परिस्थितियों में, चाहे बीमारी है, चाहे कठिनाई है, चाहे परीक्षाएं है, चाहे विरोध है, चाहे शत्रुता, चाहे घटी है, चाहे कमी है, हमारे जीवन किस प्रकार से मसीह के साथ रहता है, ये हमें सोचना है। आखिरी बात, दूसरे के विश्वास में बाधक बनाने का अर्थ हमारे जीवन में क्या है, क्या हम दूसरे के विश्वास में किसी को किसी रीते बाधक बन रहे हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक जिसको इंग्लिश में बोलता जाता है, ठोकर खाने का पत्थर, कि हमारे व्यवहार या हमारा जीवन या हमारा कार्य, हमारे निर्णय, हमारे किसी न किसी विश्वास व्यक्ति को, जो अच्छा खासा विश्वास में आगे बढ़ रहा है, संगति में आगे बढ़ रहा है, प्रभु में आगे बढ़ रहा है, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एकदम कोई ना कोई उसके सामने कोई ना कोई हमने ठोकर डाल दी। सोचना में ठोकर, कई सारे विश्वास एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं, सेवक लोग ठोकर का कारण बन जाते हैं, किस प्रकार से सावधान होना है हमें, किस प्रकार, ये प्रश्न जो हमें देखना है हमें कैसे। बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक जीवन में तो जीत रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। जब हमारे कैंप होते हैं, जवान बच्चों के कैंप होते हैं, एक महीने कैंप होते हैं, हमारा डिवोशन सिखाया जाता है कि आपको मॉर्निंग मनन करना, प्रातःकाल मनन करना, आपको बाइबल पढ़नी है, लोग बहुत जोश में आते हैं, निर्णय लेते हैं, और फिर उनका डिवोशन शुरू होता है, उनके घर में जाके घर वाले कहते हैं, अरे मामा माँ बाप कहते हैं, क्या हो गया इसको, पहले तो अब कैसे हो गया कुछ हो, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता, फिर उसी स्थिति में आते, फिर उस दिन क्यों, हमारे लक्ष्य तो थे लेकिन कब तक के लिए थे, वो थोड़ी समय के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्या हमारा, हमारा जीवन लंबे समय के लिए क्या है, किस प्रकार से लंबे समय में हम जीवन को व्यतीत करना चाह रहे हैं। हमारा संबंध जब तक गहरी रीति से परमेश्वर साथ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। और जब हम वचनों को अध्ययन करते हैं, तो इस सच है कि हम घटनाओं को तो देख लेते हैं, घटनाओं से कुछ सीख लेते हैं, लेकिन इसके पीछे ये सारी चीजें छुपी हुई है जिसको हमें अपने जीवन में लेनी है, जिसको सोचना है, विचारना है, तब हम समझते हैं। तो इसीलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों को मैंने आपके सामने डाला है, हमें सोचना विचारना हमारा मसीह जीवन, तब हम आगे बढ़ते हैं। सच है, एक बात ध्यान रखिए, उद्धार जो है, सेल्वेशन जो है, फ्री गिफ्ट है। उद्धार परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त वरदान है, वो हमें मुफ्त दे रहा है, लेकिन उसको देने के लिए उसने मुफ्त नहीं करा, उसको उसने कीमत चुकाई है, उसने मेरे लिए कीमत चुकाई, कीमत चुका करके मुझे मुफ्त में दे दिया। लेकिन मसीह जीवन जो हम व्यतीत करते हैं, वो मसीह जीवन जो हम व्यतीत करते हैं, उस जीवन को जीने के लिए हमें मूल्य चुकाने के लिए तैयार होना। उद्धार फ्री है, लेकिन मसीह जीवन जीना मूल्य चुकाना है। और अगर हम उस मूल्य चुकाने को नहीं, अब मान लीजिए उदाहरण के लिए, एक उदाहरण दे रहा हूं प्रैक्टिकल, सुबह सुबह आज 9 बजे आपको यहां पर आना, 9 बजे टाइम है, कितने बजे उठना है, क्या करना है, कैसे करना, तैयार होना, ठंड है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं अगर छुट्टी होता है आराम से बिस्तर पड़ रहे हैं, कुछ और होता है ऐसे, लेकिन कोई ना कोई करने के लिए, चाहे जो भी, जो आप जितने जन भी आए, कहीं ना कहीं छोटा सा उदाहरण जो प्रतिदिन के जीवन से हमारे रिलेटेड है, प्रतिदिन के जीवन एक छोटा सा, लेकिन इसी को हम और तरफ से जोड़ सकते हैं, और तरफ से जोड़ सकते हैं। पर मसीह जीवन को व्यतीत करना, इवन नियमित रीति से परमेश्वर साथ डिवोशन करना, मनन करना, प्रार्थना करना, उसके साथ व्यक्तिगत समय व्यतीत करना, वो भी मूल्य चुकाना है, वो भी मूल्य चुकाना है, ये हमें देखना है। सो कितना अधिक मसीह जीवन में प्रभु में मूल्य चुकाना तैयार, ये पौलुस के जीवन का आधार था, जो आज हम देखने जा रहे हैं आगे, ये आधार था, उसी को हम देखेंगे किस तरीके से। तो जब मसीह जीवन के बारे में बात है, ठीक है, पौलुस ने करा, लेकिन पौलुस के जीवन से मुझे और आपको क्या मिल रहा है, क्या मैं और आप ले रहे हैं उसे, ये मैं समझ गया। तब हम आगे चलते हैं 21वें अध्याय में। जब हम 21वें अध्याय में चलते हैं तो हम कुछ खंडों को उसको बांट सकते हैं। पहली बात, पहले से 16 पद में पौलुस, अब पहले से 16 पद में पौलुस एक विशेष स्थान में मिलेतुस से अब यरूशलेम की ओर जा रहा है। मिलेतुस में रुका हुआ है, एशिया माइनर में जगह है, वहां रुका हुआ है, अब रुकने बाद वो आगे जाएगा और करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन किस तरीके से, पहले से 6 पद तक एक खास जगह सूर है, मैं पढ़ रहा हूं, हाँ, जब हम उनसे विदा होकर जहाज में रवाना हुए तो सीधे चलकर कोस पहुंचे और दूसरे दिन रुदुस, तब वहां से पतरा तथा फिनिके जाने वाला एक जहाज पाकर हम उस पर चढ़े और चल पड़े। जब हमें साइप्रस दिखाई दिया तो उसे बाई ओर छोड़कर सीरिया की ओर मैं बढ़े और सूर में जा उतरे। सूर सदा का नाम प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा लिया है नए नियम में, क्योंकि वहां जहाज का माल उतरता था, ये पोर्ट था, वहां पर जहाज सामान लाते थे, वहां उतरते थे। जैसे आज के समय में हम कई स्थानों में अपने देश में भी देखते हैं, बॉम्बे में है या दूसरे स्थान में, वहां था। तो उस समय कई सारे जहाज का काम, जहाज बहुत पहले से, और सबसे जाते हैं हम इसीलिए, तर्शिश के जहाज सबसे ज्यादा फेमस थे, और सुलेमान ने भी तर्शिश से जहाज मंगवाए थे। तो बहुत सारे पहले के वर्षों से ये जहाजों की है, नई चीज नहीं, हाँ मॉडिफिकेशन हुआ है, उसमें सुधार हुआ, बदलाव हुए, लेकिन ये चीजें बहुत पुरानी है जो कई वर्षों से चली हो रही और उसमें यात्रा करती थी। लेकिन अब देखिए 4 पद जिस पर मैं आना चाह रहा हूं, और चेलों से भेंट करके हम वहां 7 दिन तक रहे। पौलुस वहां पर 7 दिन रह करके चेलों से भेंट करके उनके साथ बातचीत कर रहा है, वचन बांट रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है, उनके विश्वास को मजबूत कर रहा है, क्योंकि पहले भी वो आ चुका, दूसरी मिशनरी यात्रा में वो यहाँ पर आ चुका है और आकर उसने सुसमाचार को बांटा है। सुसमाचार को बांट करके लोगों ने विश्वास किया है, अब उन्हीं विश्वास को वो उनको मजबूत कर रहा है 7 दिन रहकर, क्योंकि उनकी हेल्प सहायता कर रहा है। लेकिन जब क्या हुआ, अब उसको आगे बढ़ना है, तक रहे और वे आत्मा में की अगुवाई के द्वारा पौलुस से कहते रहे, कौन ये वहां के लोग पौलुस से क्या कह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर का आत्मा उनकी अगुवाई पकड़ रहा है। वो कह रहा, आत्मा की अगुवाई में के द्वारा पौलुस से कहते रहे कि यरूशलम में पैर ना रखे। अब ये लोग उसको यरूशलम से में जाने के लिए रोक रहे हैं। पौलुस यरूशलम जाना चाहता है, पिछली बार हमने देखा था कि क्यों वो यरूशलम जाना चाहता था, और तब हमने 20वें अध्याय में इस बात को देखा था, क्योंकि यरूशलम से उसका कितना अधिक उसका हृदय जुड़ा हुआ था, लगाव था यरूशलम, कितना अधिक, क्योंकि उसने यरूशलेम में रहकर किस प्रकार से वहां पर न केवल शिक्षाओं को प्राप्त किया था, गमलेल के चरणों में रहकर उसने शिक्षा प्राप्त करती, उसके बाद सबसे ज्यादा मसीहों को भी सताया था, उसी के बाद वहां पर प्रभु को पाया भी था, उसके आगे चलकर यरूशलेम में कलीसिया ने सबसे पहले कलीसिया ने अपना हाथ बढ़ा करके उसको संभाला भी था, अगर प्रेरित काम उसके 9वें अध्याय में। अब उसके हृदय में ये था कि उस क्षेत्र में कोई भी ऐसा यहूदी या अन्य जाति ऐसा ना रहे जिनको सुसमाचार सुनाने का मौका ना मिले, और इसलिए उसका मन बहुत ज्यादा बार बार यरूशलेम की ओर करता था, यरूशलेम की ओर करता था। इसे 20वें अध्याय में भी हम कुछ बातों को देख चुके थे। अब लेकिन क्या हो? अब ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग उससे कह रहे तो यरूशलेम मत जा, यरूशलेम मत जा। पर पौलुस क्या कर रहा है, पौलुस यरूशलेम को जाना चाहता था। हम कई सारे स्थलों को देख सकते हैं जो पर। तब क्या हुआ, जब वो वहां हमारे ठहरने के दिन पूरे हो गए तो हम विदा होकर चले, और हम सब लोग स्त्रियों तथा बच्चों सहित हमें नगर के बाहर तक पहुंचाने आए, और समुद्र तट पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने के पश्चात हमने एक दूसरे से विदाई ली। फिर हम ये देख रहे हैं, पहले हमने 36 पद पे देखा था घुटने टेक कर प्रार्थना करने, अब पौलुस फिर ये घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा उनकी विदाई को लेने के लिए, क्योंकि यरूशलेम। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, तू यरूशलेम मत जा। क्या कारण था? पर वो कह रहे हैं परमेश्वर का आत्मा में अगुवाई कर, क्या सच में परमेश्वर का आत्मा उनका अगुवाई कर था? लेकिन इससे पहले पौलुस पहले से इस बात को देखकर निर्णय ले चुका था, और परमेश्वर के आत्मा ने उसको पहले से इस बात को बता दिया था। अगर 20 अध्याय के हम देखते हैं, 20 अध्याय उसके 22 पद में, 20 अध्याय 22 पद में, और देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, अभी पहुंचा नहीं रास्ता में, लेकिन क्या कह रहा, आत्मा में बंधा हुआ मैं यरूशलेम को जाता हूं, और वहां ना जाने मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल ये कि पवित्र आत्मा प्रत्येक नगर में मुझ पर गंभीरता पूर्वक गवाही देकर कहता है कि मैं बंधन और क्लेश तेरी प्रतीक्षा में है। यहां पर पौलुस को पवित्र आत्मा स्पष्ट से अगुवाई दे रहा है, तो उसको बहुत पहले ही परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई दे दी थी, ये बोझ दे दिया था, ये दर्शन दे दिया था, ये इच्छा दे दी थी कि वो जा करके यरूशलेम में वापिस जाए और जा करके वो सुसमाचार सुनाए, और सुसमाचार ही जरूरी था कि लोग सुसमाचार को जाने, और आज भी मेरे और आपको सुसमाचार को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैंने और आपने सुसमाचार को नहीं जाना तो मेरा और आपका जीवन बेकार है, और सुसमाचार ये है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बार बार बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, दूर है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मर जाएगा, जो भी संसार में जिसने भी जन्म लिया वो व्यक्ति पापी है, अपने धर्म कर्म के द्वारा, अपने रीति विधि के द्वारा, अपने और बातों के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, वो किसी भी प्रकार से उस धार्मिकता को नहीं प्राप्त कर सकता जो परमेश्वर की धार्मिकता है, परंतु वो पाप में जीवन को व्यतीत करते हुए उसकी मृत्यु के बाद उसके जीवन अनंत काल के नरक में जाता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो। दूसरे ध्यान में पहला तीन उसका दूसरा, और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया, मनुष्य बनकर आया, वो मेरे और आपके लिए संसार में रहा, केवल शिक्षाएं नहीं दी, केवल आश्चर्य कर्म नहीं किए, केवल कुछ बड़े काम नहीं किए, केवल वही नहीं करा, लेकिन सबसे बढ़कर के उसने पाप के लिए चुनौती दी, लो मन फिराओ, लौट आओ, पश्चाताप करो, और पाप के लिए चुनौती, और तब उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पर बलिदान कर दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वो स्वर्ग पे विराजमान है, और फिर से आएगा ताकि वो मेरे और आपको अपने साथ ले जाए, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है उनको वो उद्धार दे, उनको पापों की क्षमा के बाद उसने जो दिया है अनंत के साथ कल अपने साथ रखे, लेकिन जिन्होंने उसका तिरस्कार किया वो उसके उसको दंड दे और वो नरक में जाए। ये सुसमाचार पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। प्रश्न यह है, क्या आपने सुसमाचार को जाना है? क्या सुसमाचार को आपने अपनाया है हृदय में? या नहीं, केवल दिमाग में नहीं, लेकिन वो हृदय उस सुसमाचार ने आपके दिल को, आपके हृदय को परिवर्तित किया है, बदला है, अगर नहीं तो बेकार है। तब आगे चल करके कहता है, कह रहा है केवल पवित्र आत्मा ने मुझसे, मैं अपने प्राण को किसी प्रकार भी अपने लिए प्रिय नहीं समझता, ये लक्ष्य उसका, मैं अपने प्राण को किसी प्रकार से अपने लिए प्रिय नहीं समझता, यदि समझता हूं तो केवल इसलिए कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो मुझे प्रभु यीशु मसीह में मिली है पूर्ण करूं, अर्थात मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गंभीरता पूर्वक साक्षी दे सकूं। ये सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार है, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और उसके अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार प्राप्त हो सकता है, धर्म कर्म के द्वारा नहीं, रीति विधियों के द्वारा नहीं। और ये सो पौलुस को पहले से परमेश्वर आत्मा से पहले भी बार बार उसने कहा। अब लेकिन यहां पर लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, कई बार हम अपनी बाहरी इच्छाओं में गिरे रहते हैं, कई बार स्वयं की दृढ़ भावनाएं या स्वयं की इच्छा के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, कोई चीज हमें घेरी हुई है, किसी से विवाह करना है, विवाह करना है, क्योंकि उसने सारी चीजों का हमारे दिमाग को घेर रखा है ना, उस लड़के ने या उस लड़की ने, उस पत्नी ने घेर रखा है। और हम कहते हैं प्रभु का आत्मा अगुवाई कर, प्रभु का आत्मा अगुवाई, वास्तव में प्रभु का आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि पहले ही समझते तुम्हारी दृढ़ भावना है, हमारी दृढ़ इच्छा है, कोई भी निर्णय में हमें देखना है इस बात को। समता इन लोगों को ये डर था, इसलिए कहते हैं डर था कि अगर पौलुस यहां से चला जाएगा तो पौलुस के कारण अभी हम बचे हुए हैं यहां पर, चला जाएगा तो कहीं सतावनी का विरोध का सामना हमें ना करना पड़ेगा। और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि पौलुस उनके से हट कर जाए, क्योंकि पौलुस को वहां रहते हुए अपने आप को सुरक्षित समझ रहे थे, सुरक्षित समझ रहे। कई बार बहुत सारे लोग एक अगुए के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, अगुए के इर्द गिर्द रहना, अगुए के इर्द गिर्द रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे, कोई बातों की अगुआ संभाल लेगा, कोई बातों की उत्पत्ति लेगा और उसके चारों रहना चाहते। ठीक ऐसी परिस्थिति यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। और इसीलिए कह रहे हैं कई बार परमेश्वर की अगुवाई को परिभाषित करना या अनुवादित करना कठिन हो सकता है, जो परमेश्वर हमें अगुवाई दे रहा है उसको हम बताना या उसको करना मुश्किल होता है, परंतु जीवन में दृढ़ निश्चय को देखना जरूरी है। सो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं ओ पवित्र आत्मा हमसे कह रहा तू मत जा यरूशलेम में, पौलुस का कह रहा नहीं मुझे वहां जाना है, पौलुस कह रहा है। और बार बार परमेश्वर का फिर उसके बाद कैसे कंफर्म होता है कि पौलुस जो कह रहा वो सही है, कैसे कंफर्म होता है कि पौलुस जो कह रहा सही है, आगे चल के हम देखते हैं। तब उसके बाद सातवें पद से लेकर के अब यहां पर एक और व्यक्ति है, जब हमने सूर में जल यात्रा कर ली तो फिलिपी पहुंचे और भाइयों का अभिवादन करके हम एक दिन उसके साथ रहे, दूसरे दिन वहां चलकर हम कैसरिया पहुंचे, अब वहां से कैसरिया पहुंचते हैं ये, और वहां पर उसने कैसे में जाकर के फिलिपस सुसमाचार प्रचारक के घर जाकर जो सातों में से एक था कि ठहरे। ये फिलिपस कौन है? प्रेरित काम उसके छठे अध्याय में जब सात लोगों को चुना गया था, जब कलीसिया में भीतर से कुछ समस्या शुरू थी कि विधवाओं की सुदिन ली थी, तो सात सुनामी पुरुषों को चुना गया था, उन सात सुनामी में प्रेरित काम उसके छठे अध्याय और उसमें फिलिपस भी था, फिलिपस को चुना गया, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का आदर था, धर्मी था, वो सारे गुण वहां पर पाए जाते हैं छठे अध्याय में। और तब हम उस इसी फिलिपस को देखते हैं आठवें अध्याय में, आठवें अध्याय में तब हम फिलिपस देखते हैं कि इसी ने जाकर खोजा को सुसमाचार दिया था, खोजा को बताया था, परमेश्वर ने फिलिपस से कहा तू जा खोजा के रथ में बैठ और उसको बता, और तब उसको समझाया और तब खोजा ने विश्वास किया, और विश्वास करने बाद तब फिलिपस ने उसको बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मा देने बाद परमेश्वर ने फिलिपस को वहां से उठा लिया। अब यहां पर हम फिर से फिलिपस को देखते हैं, ये फिलिपस एक सुसमाचार प्रचारक है, कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को दिया है, कुछ सुसमाचार प्रचारक है, इफिसियों का 4 अध्याय उसका 11 पद में स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं, कुछ पास्टर शब्द केवल एक ही बार आया और वो वहां पर आया है। अब उनकी 4 बेटी हैं और चारों बेटी भविष्यवाणी करती है, नबी हैं, बाइबल में कुछ महिलाएं हैं, पुराने नियम में भी है, करीब 6 महिलाएं हैं जो अलग अलग जिनको हम देखते हैं जिन्होंने भविष्यवाणी का परमेश्वर को वरदान दिया है, भविष्यवाणी का वरदान है, हम उसको काट नहीं सकते, लेकिन कैसे किस चीज को परखना है, उसको पहचानना है। कोई भी आजकल बहुत सारी झूठी भविष्यवाणी करते हैं उनसे हमें सावधान रहना है, उनसे सावधान रहना, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए, परमेश्वर के आदर को देने के लिए होना है। तब दे तब 10 पद से लेकर, थोड़ा सा मैं जल्दी में भाग रहा हूं, तब 10 पद से लेकर जब हम रहते तो कुछ दिन हो गए तो यहूदिया से अगबुस नाम एक नबी वहां आया, यहूदिया से एक अगबुस। अब ये जो अगबुस है कौन है अगबुस? इसने 11 अध्याय पर तो 11वें अध्याय में भी भविष्यवाणी की कि यरूशलेम क्या होने वाला है, अकाल पड़ने वाला है, अकाल पड़ने वाला। और तब परमेश्वर के दया में होकर के प्रेतों ने क्या करा था, वहां पर बरनबास को और पौलुस को धन इकट्ठा करके इनको भेजा था कि जा करके वहां पर उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें। प्रेत काम उसका 11 अध्याय। जब 12 अध्याय के अंत में आते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास अपनी सेवा को पूरा करके जो इस अकाल के समय, कई बार लोग इन सारी सेवाओं का तिरस्कार करते हैं, कई बार लोग इससे नहीं बाइबल में इस बात को ध्यान दीजिए, बाइबल में सबसे बड़ा उद्देश्य आत्माओं को जीतना है, आत्माओं को जीतना है। लेकिन लोगों से प्रेम करना बाइबल बार बार बताता है, लोगों के दुख में शामिल होना बार बार। अभी कोरोना का समय में कितने लोगों ने, कितनी मसीह संस्थाओं ने, कितने लोगों को भोजन पहुंचाया, हमारे चर्च ने, हमारी कलीस ने, आप लोगों ने जिन्होंने सहायता की, कुछ लोग थे उन्होंने सहायता की, उन्होंने धन दिया। किस एक परिवार था जिसने करीब 20 पैकेट लाकर हमें दिए कि आप जाके दूसरों को दीजिए। इस तरह से कोरोना में बहुत लोगों ने मदद करी और आप ही लोगों ने मदद करी, और तब हमने कई लोगों की मदद करी, कलीसिया के लोगों की मदद करी, बाहर के लोगों की मदद करी, यहाँ झुग्गी में लोग रहते हैं उनकी मदद करी, हम लोगों कई परिवारों की मदद की, हमने अपने प्रेम को दिखा सके। ये पाप नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारा उद्देश्य क्या है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, लोगों की चिंता करना, लोगों की सेवा करना, ये सोशल वर्क जो है ये पाप नहीं है। लेकिन उद्देश्य हमारा ये ज़ायन की चर्च की सेवा जो जितनी भी कई जगह आरंभ हुई है वो इसी के द्वारा आरंभ हुई। हमने नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुरू करा, धीरे धीरे वहाँ कलीसिया स्थापित हुई और प्रभु की सेवा आगे बढ़ी। हमारा मुख्य लक्ष्य आत्मा को जितना, कलीसिया को जितना, और यही पौलुस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो अद्भुत सिद्ध था कि उसने वहां पर भविष्य, और यही अब पौलुस के लिए भविष्यवाणी करा। ये क्या कह रहा है 11 पद में, हमारे पास आकर उसने पौलुस का कमर बंध लिया, एक कमर जो पौलुस कमर में बांधता था उसका लिया, और अपने हाथ में पैर बांध कर कहा, क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा ही कहता है, वो कह रहा है पवित्र आत्मा कहता है, जिस मनुष्य का ये कमर बंध है, किसका था, पौलुस का था, उसको यरूशलेम में यहूदी इसी प्रकार बांधेंगे और गैर यहूदियों के हाथों में सौंप देंगे। जब हमने ये सुना तो हम और वहां के स्थानीय लोग उससे यरूशलेम न जाने का अनुरोध करने लगे। अब ये लोग क्या करने लगे, ये लोग जो देख रहे थे, जब अभी तक अनुरोध करते तो मत जा, मत जा, लेकिन जब अगबूस ने आके ये बोल दिया कि ठीक है ये कमरबंद उसका है, वो जाएगा, लोग उसके साथ ऐसे करेंगे, तो लोग और उसको रोकने लगे, नहीं भैया पौलुस तू वहां मत जा, तू जाएगा तो ये सुलम में ऐसे। लेकिन पौलुस नहीं माना, पौलुस तब क्या हुआ, तब पौलुस ने उत्तर दिया, तुम ये क्या कह रहे हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ रहे हो। ये रोने लगे, यहां तक रोने लगे कि मत जा, मत जा, मत जा, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने परंतु मरने के लिए तैयार हूं। जब वो नहीं माना तो हम ये कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। जब वो नहीं माना, पौलुस नहीं माना, पौलुस कह रहा मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं मरने तैयार हूं, लोग रो रहे हैं, अरे तू मत जा, वहां जाके कर। लेकिन पौलुस ने ठान लिया था क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको कहा था और विशेष उद्देश्य से गया। जब हम 22वें अध्याय में जाएंगे तो 22 अध्याय 26 अध्याय में देखेंगे पौलुस किस प्रकार से अपने जीवन की साक्षी देता है, और तब हम वहां पर एक बात खास सीखेंगे कि एक विश्वासी को किस प्रकार से अपने जीवन में साक्षी देनी चाहिए। वो बहुत अच्छा विषय है, 22 अध्याय 26 अध्याय, तो हम बाद में उसको सीखेंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि प्रभु की इच्छा, इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम की ओर चल पड़े, कैसेरे से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें साइप्रस के मनासोन नामक एक पुराने चेले के पास ले गए जिसके हाथ यहाँ हमें ठहरना था। सो अब पौलुस की यात्रा यहाँ से आगे बढ़ती है, तो आज हम यही रुकना चाहेंगे। खास बात जो आज हमने देखा या सीखा है, हमने खास बात ये सीखा कि किस प्रकार से सब कुछ होने बाद भी पौलुस अपने जीवन में उसका एक लक्ष्य था, उसका एक समर्पण था, उसने अपने जीवन को सुसमाचार के लिए दे दिया था, उसने अपने जीवन को सुसमाचार के लिए दे दिया था, उसने अपने जीवन को सेवा के लिए दे दिया था। जीवन कैसे व्यतीत किया पौलुस ने, यहूदियों को कभी भी ये नहीं कहा, यहूदियों को कभी नहीं कहा कि तुम व्यवस्था का पालन मत करो। हाँ ये सिखाया व्यवस्था उद्धार नहीं देती, ये सिखाया व्यवस्था के द्वारा तुम बचाए नहीं जाओगे, ये उसने, लेकिन उसने अपने आप में अन्य जातियों को ये नहीं कहा कि तुम व्यवस्था का पालन करो, लेकिन दोनों को ध्यान में रखे एक बात करी, सुसमाचार क्या है, कैसे तुम उद्धार पाते हो, कैसे तुम बसते हो, कैसे पाप से छुटकारा पाते हो, कैसे जीवन व्यतीत करते हो, परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर की योजना ये, ना तुम व्यवस्था द्वारा बच जाओगे, ना तुम व्यवस्था के द्वारा बच, लेकिन यीशु के द्वारा बच जाओगे। सो दोनों को उसने, उसको कंडम करके उसको नीचा नहीं करा, उनको भ्रमित नहीं करा, लेकिन केंद्र में उसका प्रभु सुसमाचार था और उसको लेकर के वो सदैव लोगों के सामने खड़ा रहा। उद्धार का संदेश उसके लिए मुख्य था। मेरे प्रियो, पौलुस के लिए जीना मसीह मरना लाभ था, वो सुसमाचार के लिए सब कुछ सहन तैयार था। पौलुस के लिए जीना मसीह मरना लाभ था, वो सुसमाचार के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार था। प्रश्न ये है, आज हम प्रभु के सुसमाचार से कितना प्यार करते हैं, आज हम कितना अधिक उसके लिए समर्पित हैं, कितना अधिक हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या सच में। अगर आज मेरी और आपकी आंख बंद हो जाए और मुझे और आपको प्रभु के सामने खड़ा होना पड़े तो हम प्रभु के मुंह से क्या सुनने पाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न। ये विश्वासी लोग समझ नहीं पा रहे थे, रो रहे थे, पौलुस को जाने नहीं दे रहा था, लेकिन पौलुस सब कुछ सहन किया था, वो जानता था और ये जानता था क्यों। अगर पौलुस आगे ना जाता तो बहुत सारे स्थानों में यहां तक अग्रिप्पा और राजा को सुसमाचार सुनने को नहीं मिलता। और तब अग्रिप्पा का राजा कहता है, क्या तू थोड़ा सुना करके हमें मसीह बनाना चाहता है। उसने इस बात को कहा, अर्थात उस राजा तक को उसने सुसमाचार सुनाया। मुझे नहीं मालूम मेरे और आपका कौन सा प्रभु ऐसा मौका देता है कि हम यीशु के सुसमाचार को सुना सके, कहीं भी, प्रभु साधा। सो आज हमने जो विशेष बात देखी है वो ये देखी कि हमारे जीवन के जो निर्णय है पवित्र आत्मा, कई बार हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, लेकिन क्या सच में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, या हमारा मस्तिष्क, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी परिस्थितियां, हमारे मित्र हमारे को धकेल रहे, या कुछ और चीज को हम देखें, या सच में परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। क्योंकि हमने इस बात को देखा कि पौलुस जिस बात को कह रहा था पहले से उसने ठाना था, दोबारा एक नबी है उस बात को कन्फर्म कर रहा है नबी। और हमेशा परमेश्वर की अगुवाई जब हम प्राप्त करना चाहते हैं, केवल हम अपने आप में नहीं लेकिन प्रभु के अगुओं के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वे हमारी अगुवाई में साथ आते, वे हमारी अगुवाई में साथ आते। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, मुझे मालूम है अगर प्रभु के लोग मेरी अगुवाई ना करते शायद मैं अचल नहीं छोड़ता, नौकरी नहीं छोड़ता। विवाह के लिए प्रभु के लोगों ने मेरी बहुत अगुवाई करी, मेरी प्रार्थना करी, मुझे उनके पास जाना पड़ा। जीवन में कई सारी परिस्थितियां, आज भी कई सारी बातों के लिए हमें अपने लोगों के पास जो हमारे सहकर्मी हैं या हमारे साथी या विश्वासी बड़े हैं, हम उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं, सलाह लेते हैं, अगुवाई लेते हैं, आज भी जरूरत है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, हमें परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को हम सीख सकें, उनको सीख सकें, उनके अनुसार चल सकें। आइए हम प्रार्थना।